ओम शांति। बाबा का स्वरूप कैसा था, माताओं को कैसा लगा? बाबा बोलो, अच्छा लगा। और कुछ बताओ। नेपाल के कौन कौन बैठे भाई बहने, नेपाल वाले? अच्छा, तो नेपाल वालों को कैसा लगा बाबा? बढ़िया लगा। अच्छा, प्यार का सागर था ना, जाने की इच्छा नहीं हो रही थी बाबा की? लगा ऐसा? बाबा चाहता था यहीं रह जाऊं नहीं। बाबा की बहुत दिल को खुश करने वाली बात मुरली में सुनी आज या कल थी। जब बाप बच्चों को दुखी देखता है और नीचे से बहुत पुकार होती है तो बाबा को क्या हो जाता है परम धाम में? बेआरामी हो जाती है। चलूं, समझने की बात है बहुत। बाप है ना वो? बाप कहने के लिए नहीं, बाप माँ। जैसे किसी माँ बाप के बच्चे दुखी हों, माँ बाप कहीं भी दूर रहते हों, उनको बेचैनी हो जाएगी, वाइब्रेशंस पहुंचने लगेंगे। तो परम धाम तक भी पहुंच गए हम सब के वाइब्रेशंस, और उनसे रहा नहीं गया। आ गए वो नीचे तो सचमुच प्यार का सागर बाबा है, ये हमने सबने अपनी आंखों से देखा ना। भक्ति में लोग गाते हैं और हम सब उसे आंखों से देख नहीं रहे बल्कि अनुभव कर रहे हैं। वो प्यार का सागर, तो उसका प्यार किसके लिए है? हम सब के लिए। हम बहुत अच्छी फीलिंग में बैठते हैं तो याद रखना है बाबा के इन पार्ट्स को देखकर निर्संकल्प। क्वेश्चन नहीं, अगर क्वेश्चन उठेंगे इसने ऐसा क्यों कर दिया, तो आनंद खत्म हो जाएगा, फिर मजा नहीं रहेगा वहां बैठने में। आनंद बिल्कुल साक्षी भाव, क्योंकि बाबा का ये पार्ट अब समाप्ति की ओर है, अब कुछ और होगा। दो तीन सीन आगे हम देखेंगे, सब वो सब देखेंगे। तो हमें अपनी स्थिति को वैसा बनाना है जैसा बाबा इशारा दे रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत अच्छी लहर चल रही थी और जरूर बाबा कुछ और अच्छा एक दो रहस्य खोलता, लेकिन ड्रामा में नहीं था, अगली बार खोलेंगे। कई सोच रहे थे बाबा को हर बार दीपक ही दिखते हैं, क्या बात है? क्या उत्तर देंगे आप इसका? ऊपर से जब बाबा नीचे देखता है तो संभव है सभा में कुछ बहुत तेजस्वी आत्माएं आ गई हों, जो ऊपर से बाबा को दिख रही हैं चमकती हुई ज्योतियां, दिवाली हो रही है नीचे। मैं आपको एक बात सुना दूं जो आप में से शायद किसी को पता नहीं होगा। 68 जून की बात है, बाबा यज्ञ के इतिहास में पहली बार जैसे असेंबली पर आकर बैठे और दृष्टि दी और बस थोड़ी देर में उठ गए और क्या कहा? आज सभा में कोई महान आत्मा आई है, बाबा उसको पास जाकर देखना चाहते हैं, और बाबा बीच में चले, दोनों ओर दृष्टि दी। तो भगवान को क्या दिखता है? वो मनुष्यों को नहीं दिखता है। हम तो सोचते हैं बाबा यही बोलता रहता है हर बार, पर ऐसा नहीं है। बाबा की हर बात में राज होते हैं, उन्हें हमें समझना है। पिछली बार भी एक बार दिवाली पे चली थी, सब सोच रहे थे बाबा कह रहा चारों ओर भक्त लोग दीपक जला रहे हैं, ये क्या है? हमें भी नहीं पता था। पीछे मुझे बताया गया कि उस दिन देव दीपावली थी, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है और गंगा में दीप प्रवाहित किए जाते हैं तो उनकी चमक बहुत सुंदर हो जाती है, देव दीपावली उसे कहते हैं। तो मैं समझ गया, एक दिवाली संगम की यादगार, दूसरी दिवाली देवताओं की यादगार। जब राज सिंहासन पर बैठेंगे तब भी दिवाली मनाई जाएगी, महोत्सव। कोई भी राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो पूरे नगर में महोत्सव मनाए जाते हैं, उसकी यादगार ये चली आ रही है। तो बाबा क्या देख रहे थे, ध्यान देंगे उस रहस्य पर जो बाबा खोल रहे थे कि बच्चों का प्रकाश संसार में फैल रहा है और वो दिन आएगा जब तुम्हारी इस चमक से सारा संसार रोशन हो जाएगा। अब भी लोग समझ रहे हैं, धर्म वाले माना जो धार्मिक नेता है ना, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, इनमें से भी कई अच्छे तपस्वी होते हैं जो डिग्री लिए हुए नहीं होते, तपस्वी। उनको आभास हो रहा है कि कहीं से संसार में प्रकाश फैल रहा है और एक दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो प्रकाश कहां से फैल रहा है, कहां से बोलो ना, आबू से। संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान आबू प्रसिद्ध हो जाएगा। नीचे से ऊपर पैदल आने में भी जगह नहीं मिलेगी, कारें तो छोड़ दो, कारें बंद करनी पड़ेंगी, पैदल वालों को ही जगह नहीं मिलेगी। महान तीर्थ प्रख्यात हो जाएगा। तो अभी भी आभास हो रहा है सबको कि यहां से लाइट आ रही है। अब स्पष्ट करना है हम सबको, इतनी लाइट देनी है कि संसार में ये लाइट फैले। आज इस पे ही चर्चा कर लेते हैं, कैसे फैलती है हमारी लाइट। दो हमारी लाइट के सबसे बड़े आधार हैं, पवित्रता और योग। योग का प्रकाश और पवित्रता का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। मैं ऐसे कहूंगा, मैंने कल भी क्लास में नीचे कहा ये बात, मुझे अचानक ख्याल आई, योग का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह फैलता है और पवित्रता का प्रकाश पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैलता है। देखो, चंद्रमा का प्रकाश रात को भी रात नहीं दिन में जैसे बदल देता है। अगर यहां अस्त रतन संपूर्ण पवित्र हो जाएं, तो उनकी प्योरिटी मानो आठ पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में उदय हो गए, ऐसा प्रकाश फैलेगा। तो ऐसी महान आत्माएं 108 तो हैं ही, जिनके प्रकाश से जग का अंधकार दूर होगा, जो विजयी रतन हैं, जिन्होंने माया को संपूर्ण रूप से जीत लिया, जो पवित्र आत्माएं बन गई, संपूर्ण पवित्र। हमें प्रकाश फैलाना है। अब ध्यान दें आप, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। इस स्वरूप में रहने से हमारा प्रकाश चारों ओर फैलेगा। एक अभ्यास जो बाबा हमें साकार मूल्यों में रोज सिखाते हैं, दूसरों को आत्मा देखो, जानते हैं ना सभी, आत्मा देखना माना करंट देना। आज की मुरली भी याद करो, जो मुझे बहुत याद करते हैं उन्हें मेरी करंट मिलती रहती है। हम दूसरों को आत्मा देखते हैं तो हमारी ये करंट आत्माओं को जाती रहती है और संसार में प्रकाश फैलता रहता है। समझी माताएं, समझ रही हैं? ये काम सभी को करना है। तीसरा अभ्यास हम सब करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। प्रकाश फैलेगा। और फिर योग अभ्यास, बाबा का एक महावाक्य साकार मुरलियों से जो बहुत ही सुंदर है, जो आत्माएं मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक सहयोगी हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें संसार में फैलती हैं। ये योग संसार में प्रकाश फैलाता है। तो हम जितनी अच्छी स्थितियों में रहेंगे, हम संसार में प्रकाश फैलाएंगे। और आबू में रहने वालों को, सबको जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हें तो ऐसा विजन बनाना चाहिए। यहाँ तो पहाड़ी हैं भी, पहाड़ी पर बैठ जाएं या चित्र बनाएं, हम पहाड़ी के ऊपर हैं, और चारों ओर दृष्टि दे दें, चारों ओर दृष्टि दे दें, तो चारों ओर प्रकाश फैलने लगेगा। इसलिए बाबा की बताई हुई एक प्रैक्टिस रोज हम सबको करनी है। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दो। जो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, उन्हें रोज ये काम करना है। 1 मिनट बाबा से दृष्टि ले लें, 3 मिनट संसार को दे दें, इतना थोड़ा सा समय, संसार में लाइट फैलेगी। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी सेवा दृष्टि से होने वाली है। सबको ये ख्याल रखना चाहिए। और जिन्होंने अपनी दृष्टि में बाबा को समाया होगा, जिनकी दृष्टि आत्मिक बन गई, उनकी दृष्टि से बहुत बड़ी सेवा होगी। सब अपने को इस सेवा के लिए भी तैयार करें। ऐसा समय आ रहा है तेजी से, दृष्टि देंगे जो योगयुक्त आत्माएं होंगी, जिनकी आत्मिक दृष्टि होगी, दृष्टि देंगे और आत्माएं ध्यान में चली जाएंगी, साक्षात्कार करने लगेंगी। इसलिए जिसको इतना महान कार्य करना है, करना है, कौन कौन करेंगे आप में से? सोच के हाथ उठाओ, सब माताएं करेंगी। अच्छा, जिनको इतना महान कार्य करना हो, सोचो मेरे साथ साथ, उनको छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। देखो, एक स्टूडेंट को, आपके बच्चे हैं घर में, उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा नंबर लाने हो तो वो टीवी देखते रहेंगे क्या, या मोबाइल से बात करते रहेंगे फ्रेंड से सारा दिन? मोबाइल फेंक देंगे वो। एक महान लक्ष्य को पाने वालों को छोटी बातों में रुकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। महान लक्ष्य वैसे ही दिखाई दे जैसे अर्जुन के लिए दिखाया, केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है और कुछ नहीं, चारों ओर भी नहीं, गुरु खड़े हैं, भाई बहने खड़े हैं, वो नहीं, केवल चिड़िया की आंख। महान लक्ष्य बना लें, हमें संसार को बहुत कुछ देना है। सोचेंगे सभी जो भाई बहने आए हैं सेवा में, सेवा तो करेंगे ही, लेकिन सेवा के अलावा भी समय बहुत बचेगा, रोज बचता है। और सेवा करते हुए भी अपनी स्थिति को महान बनाया जा सकता है, तो सेवा भी करेंगे, कर्म योग भी करेंगे। वो मैं आपके सामने कुछ बातें रख दूंगा जो आप सभी सेवा करते हुए करते ही रहेंगे। लेकिन पहले अपने से ये बात करें, हमें महान कार्य करने हैं तो छोटी बातों में नहीं रहना है। पसंद है? जो बातों में रह गए वो महान कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महान कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा ईश्वरीय शक्तियों की जरूरत होगी। बिना ईश्वरीय शक्तियों के महान कार्य नहीं होंगे। और वो महान कार्य कौन से हैं, पता है आपको? वो महान कार्य कौन से हैं आप सबको कम पता चलता होगा। मेरे पास तो लोग बहुत समस्याएं लेकर आते हैं, तो पता चलता है आने वाले समय में कैसे महान कार्य करने की जरूरत है। आप सभी को कहूं मैं, संसार में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, उसका संसार में डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो रोग मन में है, आत्मा में है, इसकी दवाई नहीं होती। कितने लोग आने लगे हैं मानसिक रोग से पीड़ित, कोई इलाज नहीं। ऐसे अनेक शारीरिक रोग बढ़ गए हैं जो लाइलाज। रोज मेरे पास दो चार ऐसे केस आ जाते हैं, कोई फोन से कोई मिलने, बीमारी है कोई इलाज नहीं दुनिया में उनका, डॉक्टर ने कह दिया है पैसा खर्च नहीं करो, इसका इलाज कोई नहीं दुनिया में। बच्चे पैदा हो रहे हैं गूंगे बहरे, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर है, तो वही पापात्माएं पुनर्जन्म ले रही हैं, तो बचपन से ही सुख नहीं है। आप हैरान होंगे, 6 मास का बच्चा बताया हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके, कितना भारी हो जाता है काम। एक माँ ने फोन किया, मेरी बहू को एक बच्चा हुआ मर गया, दूसरा अभी गर्भ में है, पता चला उसको श्वास नली नहीं है। डॉक्टरों ने कहा या तो पैदा होते ही मर जाएगा या गर्भ में ही मर जाएगा। रो रही हम, क्या ऐसे पाप किए हैं, भगवान भगवान को गाली दे रहे हैं, तुम ये सब कुछ हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हमने ही सारे पाप किए हुए, क्या हमें क्यों दुख दे रहा है, तुम औरों को ढूंढ लो। मैंने कहा उसने बहुतों को ढूंढा हुआ है आजकल। मैंने कहा और बाबा को भी गाली देंगे तो और मुश्किलात हो जाएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं के समझ में आता है, आप सब भी समझ लें। हम इन सब को वाइब्रेशंस देंगे तब इन्हें मदद मिलेगी। ना डॉक्टर उनको मदद कर सकते, ना उनकी धन संपदा उनको मदद कर सकती, ना उनकी पद पोजीशन उनको मदद कर सकती। केवल मदद करेंगे हमारे वाइब्रेशंस। 2 ऐसे केस सामने आए अभी अभी, आप हैरान होंगे ये बात भी सुनकर। बड़ा जज डिप्रेशन में आ गया है, कारण कुछ नहीं, कारण कोई नहीं है। आया मेरे पास, कहा बहुत मुश्किलात होती है, जजमेंट देनी है, 2 वकील खड़े हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बहस सुननी है और मेरा काम नहीं कर रहा है। कितनी कठिनाई होती है ना, एक सीनियर जज, एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर, मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी आगे, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, मुश्किलात हो रही बेचारे को। ये सब समस्याएं किसी एक दो की नहीं, 2014 ने ये बड़ी गिफ्ट संसार को दे दी है समस्याओं की, और 2015 मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरा हाल संसार का करके जाएगा, और 2018-20 तक मैं एक बात बाबा की सुनी थी बहुत पहले, किसी ने बाबा से पूछा था बाबा विनाश कब होगा। अपने आपको याद हो बाबा कहा करते थे, शंकर अगर विनाश करे तो शंकर तो बड़ा पापी माना जाए, इतनी दुनिया का विनाश करता है शंकर, इसलिए विनाश ऐसे नहीं होता। तो एक बार अव्यक्त बाबा से किसी ने पूछा, विनाश कब होगा? तो बाबा ने उत्तर दिया था, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस रचना का, कि एक समय ऐसा आएगा जब संसार का हर प्राणी भगवान को पुकार कर कहेगा, हे भगवान, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट करो। हर व्यक्ति तब विनाश होगा, ताकि कोई ये न कह सके कि इतनी अच्छी दुनिया, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, बड़े निर्दयी हो। सब कहेंगे बहुत अच्छा किया, ये दुनिया रहने लायक नहीं बची थी। बाबा कहता है, यार राक्षसों की दुनिया हो गई है, पर ये शब्द हम तो नहीं बोल सकते, पर सचमुच पाप अपनी चरम सीमा पर है। उसमें भी कौन सा पाप? काम वासना का पाप। अब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि काम ही आत्मा का महाशत्रु है, काम ही सबसे बड़ा पाप है। गीता के तीसरे अध्याय में है, काम ही सब पापों का मूल है, वो अब साफ साफ हो गया है। काम वासना की आग लगी हुई है, रोज के समाचार सुनने को मिलते हैं। इसलिए हम सभी के सकास की संसार को बहुत जरूरत है। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, 2020 आते आते संसार का हर प्राणी पुकार उठेगा, हे भगवान इस दुनिया को समाप्त करो, ये मनुष्यों के रहने लायक नहीं रही है, यहां हम जी नहीं सकते। इसलिए अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करेंगे, ताकि हम संसार को दे सके। सभी अपने से पूछें, संसार को देने के लिए मेरे पास क्या है? जैसे माताएं सोचती है ना, अपने बच्चों को देने के लिए मेरे पास क्या है, इकट्ठा करती रहती है बेचारी सारा उम्र। करते हैं ना माँ बाप, माताएं ज्यादा करती हैं चुपचाप, और बच्चे गाली भी देते रहते हैं फिर भी उन्हें देना ही पड़ता है, लात भी मारते रहते हैं, सोने भी नहीं देते, दुखी कर देते हैं, फिर भी उन्हें देना पड़ता है। हम भी सोचें, संसार को देने के लिए हमारे पास क्या है? सोच लेना गहराई से मधुवन में आकर सभी, क्या इकट्ठा किया है हमने, कौन सा खजाना है हमारे पास जो हम संसार को दें? हम इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, हम कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, वो कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, मास्टर बीज। सुना है ना सभी ने, बीज बाबा, हम जड़ें और मास्टर बीज। हमारे वाइब्रेशंस सारे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। सभी को ये ध्यान रहे, जो पूर्वज हैं, जो कल्प वृक्ष के आधार मूर्त हैं, जड़े हैं, उनके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। हमारी प्योरिटी, हमारी स्थिति, हमारा योग, हमारी खुशी, हमारी शांति सारे कल्प वृक्ष को बल देती है। इसलिए बाबा ने एक बहुत गुह्य बात कही है, कभी तुम हो इस सृष्टि के पूर्वज, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। हम ध्यान दें इस बात पर, हम जितने पुण्य कर्म करेंगे उसका बल संसार की सभी आत्माओं को मिलेगा। और अगर हमारे पाप कर्म होते रहे तो संसार को हम क्या देंगे, क्या देंगे, क्या जाएगा? एक वृक्ष की जड़ में मीठा पानी डाल दिया जाए, मान लो आम का पेड़ है, रोज एक बाल्टी भर के मीठा पानी उसकी जड़ों में डालो। फल कैसे निकलेंगे? बहुत मीठे। और खट्टी छाछ डालने लगो रोज, खट्टी खट्टी छाछ एकदम, तो क्या होगा? नहीं, जल जाएंगे, जो जड़ भी जल जाएंगी और पेट भी सूख सकता है। तो हम भी यदि छोटे छोटे भी पाप कर्म करते हैं तो निगेटिव एनर्जी आत्माओं को जाकर उनके दुखों में वृद्धि कर देती है। हम खुश रहेंगे तो संसार खुश रहेगा। सोच लें सभी अच्छी तरह। तो आज बाबा की मुरली में एक सुंदर बात थी, उस पर सभी गौर करेंगे। सदर्शन चक्र घुमाते रहो तो तुम क्या बन जाओगे? नहीं, आज कुछ और कहा मास्टर, जोड़ा ही नहीं। आज तो कहा तुम ज्ञान सागर बन जाओगे। मैं भी सोच रहा था कि बाबा मास्टर जोड़ेंगे, पर आज बाबा ने अपने जैसा बना दिया। सदर्शन चक्र माना ज्ञान का सुंदर चिंतन, पांच स्वरूपों का अभ्यास, पूरे चक्र को देखना। तो जितनी जितनी इससे हमारी बुद्धि रिफाइन होती है, स्वच्छ होती है, तो हमारा विवेक बढ़ता जाता है। बाबा की इन्हीं मुरलियों में संपूर्ण ज्ञान है। ये साकार मुरली है ना, जिन्हें लोग कहते हैं बाबा रोज रोज वही बात सुनाता है, ऐसा नहीं है। कल भी एक आया युवक, पूरी पार्टी थी उसकी, कहा मुझे मैं मुरली सुनने में बहुत बोर होता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? रोज वही सुनाता है बाबा। मैंने कहा अरे भाई, हम तो 50 साल से सुनते आ रहे, रोज देखते हैं नया नया माल मिलता है, है या नहीं? सच तो ये है, जिसने अपनी बुद्धि को जितना स्वच्छ कर लिया, ये ज्ञान का विवेक उसकी बुद्धि में समाता जाएगा और वो आत्माएं ज्ञान सागर बनती जाएंगी। ज्ञान सागर तो हम नहीं कहेंगे अपने लिए, ज्ञान में संपन्न फुल होते जाएंगे। अथाह ज्ञान हमारी बुद्धि में इमर्ज होता रहेगा। ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान का जो एसेंस है उसको कहा जाता है विवेक, विजडम, वो हमारी बुद्धि में समाता जाएगा। बुद्धि की खुराक है विवेक, सद्विवेक, दिव्य विवेक, और जिन्होंने इसमें दुर्विवेक भर लिया वो दुखी है बहुत। मनुष्य की अपनी बुद्धि का दुर्विवेक उसके चिंतन को बुरा कर देता है, निगेटिव कर देता है, और उससे मनुष्य का दुख बढ़ता है। तो सभी भाई बहनों को पहले मैं एक बात कह दूं, वैसे भी जनवरी तो अभी चली रही है, 21वीं तो हुई, अभी तो 10 दिन बाकी हैं। जब भी समय मिले बाबा के कमरे में 10-10 मिनट बैठना है। सभी सेवाधारी भाई बहने इस बात पे ध्यान दें, बाबा के कमरे में 10-10, 15-15 मिनट 4 बार अवश्य बैठना है, लेकिन अपनी सेवाओं के बाद में। ये नहीं भाई हमें तो कहा है 4 बार बैठना है, हम तो चले सेवा करके। बहुत टाइम मिलता है सबको, ऐसी कोई बात नहीं, किसी को भोजन खिलाने की ड्यूटी है, किसी को सब्जी पे रोटी पे है, सेवाओं के बाद बहुत टाइम मिलेगा, उसको पूरा सफल करना है। ठीक है, अपनी बुद्धि को शांत करना। ऐसी एक और बात मुझे याद आ रही थी, तो नीचे कोई आए, अभिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं नीचे, बाबा के बच्चे भी, कोई बहुत अच्छे, कोई पहली बार, बहुत कुछ देखते हैं इधर उधर का, कोई कुछ कोई कुछ, बाबा के पाठ को भी देख के, किसी को कोई संकल्प, किसी को कोई संकल्प। तो मैंने उनको एक बात सुनाई कि देखो, ज्ञान लेने के बाद बुद्धिमान वो है जो अपने मन को शांत रखे, बुद्धिमान वो नहीं है जो चारों ओर देखकर क्वेश्चन उठाता रहे, और नहीं तो यही क्वेश्चन, बाथरूम में गए, बड़े सुंदर बाथरूम बनाए, बहुत पैसा है इनके पास, तो ये नहीं सोचेंगे कि कितनी सफाई है यहाँ, कितना अच्छा है यहाँ, नहीं, बहुत पैसा है लगता है इनके पास तो। तो जिनको उल्टा सोचने की आदत होती है वो सोच सोच के परेशान होंगे, सुख नहीं लेंगे। भोजन बहुत अच्छा बना, ब्रह्मा भोजन बना 18 जनवरी को, 6 चीजें थी नीचे भी यहाँ भी थी, तो नीचे 25,000 की 6 चीजें बनाई, थक गए सभी भाई हमारे, तो कोई क्या कहेगा, बहुत खिलाते हैं, त्याग नहीं है बिल्कुल भी यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में, ज्यादा खिलाते हैं। और कोई महिमा कर रहे, देखो 25,000 के लिए इतनी चीजें बना दी इन्होंने, वाह क्या एनर्जी है इनमें। तो ये अपनी अपनी सोचने की विधि और दृष्टिकोण है ना, है या नहीं। हम अपने चिंतन को पॉजिटिव करें, जो जितना अच्छा सोचते हैं वो उतने ही ज्यादा सुखी रहते हैं। माताओं में ये चीजें कम होती हैं, भाई लोगों में ज्यादा होती हैं, जिनको ज्यादा बुद्धि है ना वो ज्यादा सोचते हैं, हर जगह ज्यादा सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज ये क्यों कर दिया। और जो माताएं हैं भावुक, वाह वाह गीत गा रही, आनंदित हो रही, वाह 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 मस्त हो रहे हैं। तो कभी कभी संगम युग पर अति बुद्धिमान होना भी खतरनाक हो जाता है उनके लिए, श्राप, वो परेशानी देते सोच सोच के, गाड़ी खड़ी कर दी, इतनी खड़ी कर दी, जगह भी नहीं छोड़ते, क्या बुद्धि है इनको, गाड़ी उन्होंने खड़ी की, परेशान ये हो रहे हैं। जिसको परेशान होने की आदत हो वो कहीं भी परेशान होता रहेगा। अब जब बाबा का दिन होता है तो बहुत गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, भीड़ इतनी हो जाती है। एक एक भाई नीचे का ही कहा, क्या शांति वन में भीड़ ही भीड़, बाबा के कमरे में बैठने को मौका नहीं मिलता है, शांति नहीं होती है। मैंने कहा, मैंने उससे पूछा कितने साल से ज्ञान में हो, बहुत साल से है। तो मैंने कहा अब तक ये भी नहीं सीखा कि भीड़ में भी योग कैसे लगाया जाए, भीड़ में तो और अच्छा योग लगेगा, मन भटकेगा ही नहीं। जिसको योग लगाना आ जाए उसका योग भीड़ में बहुत पावरफुल लगेगा, बल्कि एकांत में मन भटक सकता है, भीड़ में तो बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। तो कोई लोग बहुत सारे सीन देखकर आनंदित होते हैं, कोई परेशान। अब नीचे भी प्रकाश स्तंभ पर सब लोग बैठते हैं, इतना अच्छा माहौल लगता है, दिल खुश हो जाता है। और कोई लोग इन्हीं चीजों को देख के क्वेश्चंस उठाते रहते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास सद्विवेक है तो अपनी बुद्धि को कैसा बोलो, शांत, हर चीज का आनंद लेना, हर चीज का आनंद, यही सबसे बड़ी विवेकशीलता है। जिसने ऐसी प्रैक्टिस डाल ली साक्षी होने की, वो विनाश काल में बहुत सुखी रहेंगे। विनाश काल बड़ा खतरनाक होगा, जिसके लिए हम सब कहते हैं बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, विनाश देखना मासी का घर नहीं। बहुत अचल डोल स्थिति और निर्भयता चाहिए विनाश देखने के लिए। तो आप सभी यहाँ आए हैं, एक तो बाबा के रूम में बैठेंगे, केवल बैठेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं बैठ गए जाके, क्योंकि कहा है कि बैठ गए, हम तो आके यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति योग की करनी है। मन बिल्कुल स्थिर हो जाए बाबा की याद में, इसको ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। कई लोग ज्वाला स्वरूप को थोड़ा सा ठीक नहीं समझते। एक माता ने कहा, मैं तो कितने दिन से कोशिश कर रही हूँ परंतु अनुभव ही नहीं होता ज्वालामुखी योग का। मैंने पूछा, क्या समझती हो ज्वालामुखी योग को, कि ज्वाला जलेगी ना गर्म हो जाऊंगी मैं, अब तक हुई नहीं, बहुत कोशिश करती आती हूँ। ये नहीं है, इसमें शरीर गर्म नहीं होगा, आत्मा शीतल हो जाएगी। जो आज बाबा का था ना, शरीर भी ठंडा हो जाए, माना कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। तो ज्वाला स्वरूप योग माना योग में मन बुद्धि स्थिर हो जाए, संकल्प शांत हो जाए, तो ये योग अग्नि का काम करता है, जिस अग्नि में विकर्म और विकार नष्ट होने लगते हैं। तो बाबा के कमरे में बैठकर ये अच्छे अच्छे अभ्यास करने हैं। मैं एक चीज सबको कहता हूं, इसके मुझे बहुत अच्छे अनुभव रहते हैं, कि रोज दो चार बार भी कर सकते हैं, पर एक बार तो जरूर सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा से सुंदर मिलन करें। ऐसा लगे प्रभु मिलन करके आ गए हैं। रोज एक बार प्रभु मिलन का सुख मिल जाए आत्मा को। सूक्ष्म लोक में देखें अपने को, सामने बाप दादा को देखेंगे, पहला अभ्यास करेंगे, बाबा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा को, उनके अंग अंग से बहुत तेजस्वी लाइट फैल रही है, अभी देखते चले मेरे साथ साथ। फिर देखेंगे बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं, बिल्कुल उन पर ऐसी बुद्धि स्थिर हो जाए कि उनके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, ये तीन अनुभव पहले, और फिर जो मैंने आपको याद दिलाया, बाबा ने ये कहा बाबा से दृष्टि लेकर हम संसार को दे दें दृष्टि, घुमा दें दृष्टि चारों ओर, या ग्लोब को दृष्टि दें। पांचवी चीज, अभ्यास करें बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी, बहुत मजा आएगा, छत्र छाया, और बाबा बोले मैं तुम्हारे साथ हूं हजार भुजाओं सहित, तुम अकेले नहीं हो। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बहुत गुड फीलिंग होगी, भगवान का हाथ सिर पर, हाथ दुआओं का हाथ, ब्लेसिंग्स का हाथ, वरदानों का हाथ। फिर मस्तक पे तिलक लगाया और वरदान दिया। ये अनुभव रोज सवेरे एक बार, शाम को योग में बैठते हैं फिर एक बार, पांच पांच मिनट लगाएं इसमें, इससे ही शुरू कर सकते हैं योग को। बस मैं आत्मा हूं, यहां से अभ्यास करके तुरंत सूक्ष्म लोक में जाएं और बाबा से ऐसा सुंदर मिलन करें। और भी कर सकते हैं, फिर बाबा के हाथ पकड़ें, बाबा के साथ रास करें, बाबा को गले मिल लें, चलें सैर पर, फ्रेंडली एंजॉय करें उसको, फ्रेंडली मित्र बन जाएं उसके, और जैसी चाहे अनुभूति करें, ये प्रभु मिलन का सुख देगी। कोई ये न सोचे इससे विकर्म विनाश होंगे या नहीं, केवल विकर्म ही थोड़ा ही विनाश करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं ना हमें। देखो विकर्म भी विनाश करने हैं, संगम युग पर प्रभु मिलन का सुख भी लेना है, तो हमारे देव संस्कारों को इमर्ज भी करना है, सर्वगुण संपन्न और शक्तियों से भरपूर भी होना है, अपनी प्योरिटी को भी भरपूर करना है, ये सब लक्ष्य है हमारे। तो हर तरह का योग करते हुए ये न सोच ले इससे विकर्म तो विनाश होंगे ही नहीं, तो हम क्यों करें। हर तरह के योग का अलग अलग महत्व है, सब तरह का योग, वैरायटी योग करना ही चाहिए, जैसे स्वमान की प्रैक्टिस। कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं मैं स्वमान पर बोलता हूं बहुत, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये स्वमान पर बहुत बोलता है, मैं नहीं बोलता, ये बाबा ने बोला हुआ है। मैंने उसको कैच किया है, उसकी प्रैक्टिस की है। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, स्वमान से विचार महान बन जाते हैं। पहला फायदा जो बहुत बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है ये। स्वमान जिस तरह का होगा उसी तरह के संस्कार जागृत हो जाते हैं। स्वमान आत्मविमानी स्थिति है, इसलिए हर तरह की प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। सवेरे सवेरे तो सभी उठ जाते हैं, सवेरे उठकर बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। मैं एक अभ्यास पर आपका ध्यान दिलाऊं जो बहुत सुंदर है हम सबके लिए, जो सवेरे के योग को और सुंदर कर देगा। पांच स्वरूपों का अभ्यास, सब पांच स्वरूपों को जानते ही हैं, उससे योग में रस आ जाएगा, सुस्ती खत्म हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। इस पर भी सभी ध्यान देंगे। और योग के एंड में बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया, ये नहीं बाबा आपको शुक्रिया काम हो गया, ये नहीं बाबा ने हमें क्या क्या दिया वो याद करेंगे, चाहे सूक्ष्म लोक में चल के करें, बाबा को सामने देखकर सुन ले दो चार बातें, बाबा आपने आकर हमें बहुत सुख दिया, आपने आकर हमें सत्य ज्ञान से भरपूर किया, हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त कर दी, हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सोचें, टीचर के रूप में अलग दें, सद्गुरु के रूप में अलग दें, बाप के रूप में अलग, आपने हमारे जीवन को प्यार से सींचा, आपने हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया, जगाया नहीं, आपने हमें जीवन जीना सिखाया, आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए, आपने शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना की, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। रोज देंगे तो नई नई चीजें आपको ख्याल में आएंगी, बाबा ने मुझे ये दिया ये दिया। पर्सनली बहुत चीजें हैं जो हर एक के पास अपनी अपनी हैं। जीवन में अनेक जगह आपको बाबा ने मदद की होगी, अलग अलग अनेक जगह आपको विघ्नों से मुक्त किया होगा, बीमारियों में मदद की होगी, धन का अभाव हो गया, गाड़ी अटक गई, आपकी गाड़ी को निकाला होगा ये सब अनुभूति याद करके बाबा को शुक्रिया करें तो क्या होगा, बाबा के लिए मन प्यार से भर जाएगा। तो सभी चार बार बाबा के रूम में बैठेंगे, अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, पांच स्वरूपों की प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, अमृत वेले श्याम को बहुत अच्छा योग करेंगे, तो आप सभी यहाँ जो समय निकाल कर आए हैं, आपका यहाँ आना पूरा सफल हो जाए। अच्छी साधना, एक दूसरे को सहयोग भी देना है। कमरे में कई कई माताएं भी एक साथ रहती हैं, भाई भी, आठ पांच ऐसे रहते हैं ना, एक दूसरे को सहयोग। ये नहीं दो माताएं बैठ के बात कर रही हैं 11 बजे तक, माताएं ध्यान देंगी इस बात पर, दूसरे सोए हैं तो शांति, बात करनी है बाहर बहुत जगह है जाके कर सकते हैं। मान लो आपको बात करने में रुचि है, मैं नहीं कहूंगा आप ना करो, तो बहुत जगह डाइनिंग हॉल बड़े बड़े खाली पड़े, बैठ के आराम से 12 बजे तक बात करो करनी तो नहीं चाहिए, पर किसी को ज्यादा ही रस हो, लेकिन जो बातों में रहेंगे, बोलो आगे, वहां बाप नहीं रहेगा, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, इसलिए सबको भी अपने साथियों को सहयोग देना है। ओम शांति।